दिल आराम बाबा के दिल तख्त नशीन, दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले, दिल से बाबा बाबा कहने वाले, दिल में बाबा के स्नेह को समाने वाले, दिल के हर संकल्प को बाप समान बनाने वाले, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, ऐसे सदैव एक बाप दूसरा न कोई, दिल में बाबा को समाने वाले दिल के चिकित्सक आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का हम दिल से स्वागत करते हैं। दिल्ली में ही आपने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। हृदय रोग चिकित्सा संबंधित आप अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं के सदस्य हैं। सोल माइंड बॉडी मेडिसिन के नवीनतम विचारधारा में रिसर्च वर्क पर आपको 2000-2001 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से अवार्ड भी मिल चुका है। सन 2000 में यूएसए में होलिस्टिक हेल्थ केयर पर आपको गोल्ड मेडल प्राप्त हो चुका है। वर्तमान समय ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर आप कार्यरत हैं। भारत सरकार के साथ मिलकर जिस प्रोजेक्ट पर आप कार्य कर रहे हैं उसका नाम है कोरोनरी हार्ट डिसीज थ्रू राजयोगा लाइफस्टाइल, जिससे बहुत सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। बाप दादा को दिल से दिल तक प्रत्यक्ष करने की सेवा में आप सदैव व्यस्त रहते हैं। पल पल से बनता है एहसास, एहसास से बनता है विश्वास, विश्वास से बनता है रिश्ता और रिश्ते से बनता है कोई खास, जो देते हैं अंधेरों में साहस, रहते हैं दिल के पास पास। ओ मेरे प्यारे बाबा है, ओ मेरे प्यारे बाबा है, पल पल दिल के पास, पल पल दिल के पास। तो भाई जी बहुत सुंदर विषय को लेकर आए हैं। वो विषय है दिल को खुश, मन को वहा वहा और तन को निरोगी बनाने का पुरुषार्थ। तो आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी को हम नम्र निवेदन करते हैं, आप अपनी बातों से हमें लाभान्वित करें और मन वहा वहा स्थिति में कैसे रहे सदैव, इसके लिए मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी।
ओम शांति। चलिए मैं चाहूंगा कि अगले 45 मिनट लगभग आप सभी अपने मन और बुद्धि को इतना एकाग्र कर लें, क्योंकि ये टॉपिक है, ये बहुत ही गुह्य टॉपिक है कि दिल हमारा सदा खुश कैसे रहे। बाबा ने कहा ना अभी परसों मुरली में कहा कि दिल खुश है ना, बाबा के हम कौन से बच्चे हैं, दिल खुश बच्चे हैं। और हमारा बाबा ने कहा हम कौन से बच्चे, वाहवा बच्चे हैं ना, वाहवा बाबा के, वाहवा बच्चे कैसे बने। जो बाबा ने उस दिन मुरली चलाई परसों, उसी को आज हम इसी बात पे गहराई से चिंतन करेंगे कि दिल को खुश सदा कैसे बनाएं और मन हमारा वाहवा रहे सदा, अर्थात खुश रहे, चेहरा हमारा सदा हर्षित रहे और हमारा तन जिसके द्वारा हमें सेवा करनी है। तन भी जरूरी है कि नहीं जरूरी है, फरिश्ता कैसे बनना है, तन में रहते बनना है, तन छोड़ने के बाद बनना है, बताइए। तन छोड़ने के बाद फरिश्ता बनना है कि पहले बनना है, तन के अंदर ही रहते फरिश्ता बनना ना। तो तन भी हमारा कैसे, जैसा भी पुराना तन है कैसे इसको चलाना है, तो वो भी मैं आपसे आज इस बात पे चर्चा करूंगा। तो इसको हम चलिए एक मिनट के लिए दोबारा से, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अपने मोबाइल्स को स्विच ऑफ कर दें 45 मिनट के लिए, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे आपका मोबाइल। और आपको जैसे आप मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं तो आपका मन आपको कोई ना एसएमएस भेज सकता, ना आप किसी को एसएमएस कर सकते हैं, ना कोई आपको फोन कर सकता, ना आप किसी को फोन कर सकते हैं। ऐसे ही अपने मन बुद्धि का को भी स्विच ऑफ कर दे दुनिया से, देह और देह की दुनिया से स्विच ऑफ कर दें। पहले मोबाइल को स्विच ऑफ करें, उसके बाद एक मिनट के लिए हम सभी फिर एकांत में बैठते हैं, शांत होकर एकदम मन बुद्धि को एकाग्र कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। चलिए दोबारा से सभी एक मिनट के लिए बाबा की याद में बैठ जाएं, बहुत पावरफुल याद में बैठें। तो आज का विषय है सदा दिल को खुश और मन रूपी चेहरे को वाहवा कैसे बनाएं। देखो आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा कौन है, स्वीट का पहाड़ है, मिठाई मिठास का पहाड़ है। और हम बच्चे भी कैसे, हम बच्चों कैसे बनाने आए, हमें भी क्या बनाने आए, मोस्ट स्वीट बनाने आए। तो ये स्वीटनेस क्या होती है? तो बेसिकली जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं, जैसे अभी हमने परसों बाबा की मुरली सुनी, कल की मुरली सुनी, 31 तारीख की मुरली सुबह जो मुरली चली वो सुनी है ना, तो हम जो भी मुरली बाबा की सुनते हैं उसको हमें उसी से हमको अपने कैसे कैसे मंथन करना होता है, तो कैसे उसकी गहराई में जाना होता है। जो बाबा की मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ऐसे मुरली से शुरू कर रहा हूं, फिर हम इस टॉपिक पे आएंगे दिल को सदा खुश कैसे बनाएं और मन रूपी चेहरे को वाहवा कैसे बनाएं, अर्थात सदा वो भी सदा चमकता रहे, चेहरे द्वारा सेवा कैसे कर सकते हैं, चेहरे और चलन के द्वारा कैसे सेवा कर सकते हैं। तो मुरली जो सुनने के 6 स्टेप्स हैं, पहला तो है श्रवण, श्रवण सुनना। तो मुरली जब हम सुनते हैं तो मुरली सुनने के लिए पहले तो हमें एकांत जैसे बाबा की याद में बैठ के, क्योंकि हम बाबा के सकीलदे बच्चे हैं, सकीलदे माना बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे हैं, और बाबा का जो मुरली है बाबा का लव लेटर है हमारे लिए। और लव लेटर जैसे मैं जो मेल हूं चाहे फीमेल हूं, किंतु हम सब आत्माएं बाबा की सजनी है, तो बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुननी चाहिए। कहां से कैसे सुननी चाहिए? सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुन। तो पहला स्टेप है श्रवण। श्रवण भी इस समय हमारा मन बुद्धि एकदम एकाग्र होनी चाहिए, तभी बाबा की मुरली हमारे अंदर जा सकती है। चलिए 2 मिनट फिर बाबा को याद करते हैं।
शिव पिता को अब याद करो, सुकर्मों के बलकार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। Thank you.
शांति। तो मैं मुरली सुनने के आपको 6 स्टेप पहले बता दूं, उसके बाद फिर हम इस बात पर चिंतन करते हैं। पहली बात है श्रवण, माना सुनना। दूसरा है मनन करना। जो मुरली आपने सुनी बाबा की, उसको फिर रिवाइज करना, माना मनन करना, मन में बार बार दोहराना, उसे कहते हैं मनन। चिंतन तीसरा स्टेप है। चिंतन, चिंतन में क्या होता है? चिंता तो होती खराब, नेगेटिव। चिंतन है कि बाबा ने यह कहा किंतु मेरे अंदर यह स्थिति है। बाबा ने कहा बच्चे मीठा बनो, किंतु मुझे तो कभी कभी क्रोध आ जाता है। बाबा ने कहा बच्चे आप तो मीठा बनो, मैं तो कभी कभी कड़वा बोल मुझसे निकल जाता है। तो ये जैसे अपने आप से चिंतन करना कि बाबा की डायरेक्शन क्या है और मेरे अंदर क्या स्थिति है, तो ये चिंता अंदर लगाना कि मुझे इसको बाहर निकालना है, कड़वाहट को। मुझे कैसे अपने अंदर से क्रोध को बाहर निकालना है? बाबा की श्रीमत पे, क्योंकि बाबा मेरा है और बाबा ही मेरा निस्वार्थ मुझे प्यार करता है, बाकी दुनिया में सब स्वार्थी हैं, तो मुझे उसकी श्रीमत को कैसे भी करके मानना ही है। तो वो मुझे अंदर से अपने अंदर चिंता लगानी है, ठीक है, वो चिंतन। फिर है मंथन। फिर मंथन है कि बाबा का जो हर महावाक्य है वो अति गुह्य है। हर मुरली का एक एक महावाक्य अति गुह्य है, चाहे वो मीठे बच्चे बाबा बता रहा, चाहे प्रश्न उत्तर है, चाहे बाबा शुरू में कहीं भी मुरली का एक लाइन भी उठा लो वो अति गुह्य है। उसमें गुह्य राज छुपे हुए हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा आज, अभी जैसे बाबा ने स्वीट कहा, तो स्वीट माना क्या होता है? स्वीट का अर्थ क्या है? बाबा स्वीट का पहाड़ है, वो क्या अर्थ है? इसकी गहराई में जाओ, मंथन करो इस शब्द का ही, कि स्वीटनेस माना क्या, मिठास माना क्या। तो उसका मंथन से दही जमाने के बाद उसको मथते हैं ना, तो मक्खन निकलता है। जब उसका रियल मीनिंग समझ में आएगा तो अंदर बैठ जाएगा। तो मंथन करना माना उसको बार बार गहराई में, उसको और गहराई में जाते जाओ उसकी, जैसे मथो उसको बार बार। फिर मथने के बाद जो मक्खन निकलेगा ना, तो चौथा स्टेप हो गया मंथन, है ना। और फिर पांचवा स्टेप है, जो मंथन करके मक्खन निकला उसका फिर बार बार सिमरण करो, फिर बुद्धि में बार बार रिवाइज करो, ये मक्खन निकला है, इसका अर्थ ये है, मुझे ऐसा बनना है, इस तरह से बनना है ना? और फिर लास्ट स्टेप है स्मृति स्वरूप बनना। फिर वो हमारी मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता है, फिर वो चीज हमारे जीवन का अंग बन जाती है। ये सारा काम हमको 24 घंटे में करना होता है। आज सुबह मुरली सुनी, जैसे मैं अपना आपको सुनाता हूं कैसे मैं करता हूं। अमृत वेला योग होता है, अमृत वेला योग करने के बाद हम लोग सुबह सुबह मुरली पढ़ते हैं, उसी दिन की मुरली हमें रोज हमें हमारे पास होती है, तो उसी दिन हम और वो जाते ही अमृत वेला के बाद मुरली पढ़ लेते हैं। मुरली पढ़ने के बाद फिर स्नान वगैरह करेंगे, तो उसमें फिर हम उसको मुरली को रिवाइज करते, स्नान करते, ब्रश करते भी और भी कुछ करते, तैयार होते होते हम उसको सिमरण उस करते, उसको मनन करते रहते हैं। फिर मुरली सम्मुख आके सुनते हैं, क्लास में आके सुनते हैं, दोबारा रिवाइज हो गई। फिर वॉकिंग करते समय उसको चिंतन करते हैं। वॉकिंग करना है 45 मिनट, उसके बाद वॉकिंग करनी है मुरली सुनने के बाद, तो उसके बाद हम उसमें चिंतन करते जाएंगे। चिंतन माना बाबा ने आज ये कहा, मेरे अंदर तो ये बात बाकी है। फिर चिंतन मंथन करेंगे कैसे ये चीज मेरे जीवन में आ जाए, इसका बाबा ने कैसे गुहेर ऐसे क्या है इस बात के पीछे। जैसे आज स्वीटनेस की बात थी, बाबा ने कहा दे अपने अंदर चेक करो, बहुत कौन कौन सी खामियां मेरे अंदर है, उसको निकालो, एक खामी को निकालो, बाबा को याद कर सच्चा सच्चा चार्ट दो। सच्चा चार्ट क्या होता है? सच्चा चार्ट का मतलब क्या है? याद मना क्या है? एक एक बात की गहराई में चले जाओ। जैसे आज के बाबा ने कहा निस्वार्थ सेवा के बारे में बात की, निस्वार्थ सेवा, प्रदान में निस्वार्थ सेवा की बात की, कैसे सेवा भी कैसे बंधन बन जाती है। अगर हद हद की सेवा करते हैं नाम मान शान की इच्छा करते तो कैसे वो भी बंधन बन जाती, बंधन पहले ही बहुत है और नए बंधन कैसे आ जाते हैं। तो इसका फिर मंथन करो, चलते चलते ही 45 मिनट्स वॉक करनी है तो उस 45 मिनट्स में चिंतन और मंथन दोनों साथ साथ चलता रहे। फिर जो मंथन हो गया फिर वो मंथन भी ऑन रहेगा सारा दिन, पेशेंट देखते हुए भी नाश्ता करते हुए पेशेंट देखते हुए फिर उस बात को बार बार रिवाइज करो, सिमरण करो, ठीक है आज इसका मतलब ये था, स्वीट का मतलब ये था, बाबा स्वीट का पहाड़ ऐसा क्या अर्थ है, निस्वार्थ सेवा का क्या अर्थ है, तो उसकी गहराई में चले गए फिर, तो उसकी ऐसे फिर उसको बार बार सिमरण करते जाओ, तो वो धीरे धीरे फिर हमारे अंदर जब बार बार हम करते जाएंगे तो वो अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर वो हमारे एक्शन में आ जाएगा, कल सुबह की मुरली चलने से पहले पहले मेरे वो एक्शन कर्म में आ जाएगा, राइट। तो 6 स्टेप कौन से हुए, श्रवण, दूसरा बोलो मनन, तीसरा चिंतन, चौथा मंथन, पांचवा सिमरण और छठा स्मृति स्वरूप बनना, राइट। चलिए अब अपने विशेष टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि ये 6 स्टेप के बाद ही हम लोग को, जैसे अभी अभी बहुत सारी बातें आपको मैं बताऊंगा जो आपको बहुत नई लगेंगी, है ना, कि तो वो सब की सब बातें कैसे इससे इस प्रोसेस से निकलती हैं, मुरलियों से निकलती हैं, कुछ और कहीं से नहीं कि मैं किसी किताब से या कहीं से भी नहीं, सिर्फ बाबा की मुरलियों से ही सारी बातें निकली, बाबा ने सब बातें क्लियर की है मुरली में, सिर्फ हमें थोड़ा सा उसके ऊपर गहराई में जाना होता है। चलिए, अपना दिल, सदा अपने दिल को खुश रखें। ये खुशी का क्या मतलब, दिल को खुश का मतलब क्या है, बाबा कहते दिल में, जब इस बार बाबा आए तो बाबा ने कहा कि दिल में दिलाराम को समा के समाना है, सब बच्चों के दिलों में दिलाराम समाया हुआ है, इसका क्या अर्थ है, दिल कहते किसे हैं, कौन सा दिल, ये वाला दिल है क्या, इस दिल में तो 4 चैंबर्स हैं, है ना, मैंने बहुत सारे दिल खोल के भी देखे हैं ना, तो दिल में तो बहुत सारे खेल देखे हैं, उसमें तो सिर्फ 4 चैंबर्स होते हैं और चारों में खून भरा होता है, उसका एक पाव वजन होता है, दिल का वजन एक पाव होता है 250 ग्राम, और चारों चैंबर में खून भरा होता है, कुछ जगह नहीं होती उसमें, कुछ जगह होती है क्या, लोग कहते हैं मेरे दिल में वो समा गया या वो समा गई, ऐसे होता है, इस दिल में कोई समा सकता है क्या, ये दिल मंदिर है क्या, दिल मंदिर नहीं, ये दिल नहीं, इस दिल को खुश बनाने की बात नहीं है, वो दिल की, कौन से दिल की बाबा बात करता है, दिलाराम, दिल को आराम देने वाला, कौन से दिल को आराम देने वाला, इस दिल को आराम देने वाला, ये तो पंप है, आत्मा का दिल, ये दिल नहीं, हां इस दिल का कनेक्शन इस दिल से है, इस दिल में कुछ ऊपर नीचे होता है तो इस दिल को कुछ होता है, इस दिल में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ब्लॉक आता है तो इस दिल में ब्लॉक आ जाता है, तो ये कौन सा, ये आत्मा का दिल कौन सा है, इस गहराई में जाने की आवश्यकता है। फिर मन क्या चीज है, मन क्या चीज है, बुद्धि क्या चीज है, चित्त क्या चीज है, जब ये देखो, कोई भी बात की गहराई में जाने से, कहते हैं महान आत्मा बनना है हमें, महान आत्मा बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, बोलो बहने बताओ, महान आत्मा कौन बनता है, बाबा ने मुरली में बार बार बताया, भाई बताएं महान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, महान कार्य कर, इससे भी पहले क्या करना पड़ेगा, महान बनने के लिए महीनता में जाना पड़ता है, ठीक है, ज्ञान की महीनता में जाना पड़ता है, आपने मुरली सुनी, वही मुरली बार बार रिवाइज कर ली, तो उससे आप महान नहीं बन सकते। जैसे हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, खाने में क्या क्या होता है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे पहले चबाते हैं, उस पर फिर एंजाइम काम करते हैं, फिर वो खाना पेट में जाता है, फिर और एंजाइम काम करते हैं, एसिड काम करता है, फिर और टुकड़े में टूटता है, फिर आंतों में जाता है, फिर आंतों में और एंजाइम निकलते हैं, है ना, फिर नीचे जाता है, फिर उसके पूरा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, उसकी आखिरी यूनिट ग्लूकोज है, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में बदल जाता है, फैट्स फैटी एसिड में बदल जाते हैं, और वो तब जाके एब्जॉर्व होता है। ऐसे रोटी रोटी अपने खाई रोटी पच जाएगी, खून में जाएगी रोटी, रोटी जाएगी पेट में, वो खून में तो नहीं जाएगी ना, पेट में तो जाएगी किंतु खून में नहीं जाएगी, खून उसके टुकड़े टुकड़े बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे ब्रेक होगा तब जाकर के वो खून में जाएगी, उससे ताकत आएगी। ऐसे मुरली जो है रोटी है, भोजन है, किंतु मुरली को जब आप ब्रेक करेंगे उसको बहुत, उसके ऊपर अपने जो एंजाइम्स हैं अंदर एसिड है, जो आपको अकल थोड़ी मिली है बाबा से ना, जो समझ आपको मिली है, जो दिव्य बुद्धि मिली है, उस दिव्य बुद्धि से उसको बार बार रिवाइज करो, उसको फिर चिंतन करो, सच्चे दिल से चिंतन करो। सच्चे दिल से क्या चिंतन करो कि मेरे अंदर तो एक खराबी है, बाबा तो मुझे ऐसा बनाना चाहता है, बाबा तो मुझे मास्टर ज्ञान का सागर बनाना चाहता है, बाबा तो मुझे बिल्कुल शुद्ध बनाना चाहता है, पवित्र बनाना चाहता है, इसमें एक भी वैध संकल्प नेगेटिव ना आए, तो बाबा तो मुझे ऐसा बनाना चाहता है, मैं कैसे बनूं, तो बाबा की मुरली में क्या गुह्यता है उसको फिर समझना, तो उसको फिर फर्दर ब्रेक करो ना। तो मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण और फिर स्मृति स्वरूप, फिर हमारी बॉडी का पार्ट बना। जैसे खाना खाया, खाना खाने के ब्रेक करते करते पेट आंत के आखिरी हिस्से में पहुंचा, अब वो खाना जो है खून में जाके पचेगा, फिर खून में पचेगा तो उससे जो ताकत आएगी, फिर उससे हड्डियां हमारी बोन मैरो में ब्लड बनेगा, मसल्स बनेंगी, बोन्स रिपेयर होंगी, तब हमारे शरीर में ताकत आएगी, तब हमारे शरीर का अंग, वो अंग बन गया, शरीर का हमारा पार्ट एंड पार्सल बन गया। ऐसे ही मुरली हमने सुनी तो सही, किंतु हमारा पार्ट एंड पार्सल तो नहीं बनी। अब रोज मुरली सुनते रहे किंतु उससे परिवर्तन तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको बस सुना और वहीं के वहीं छोड़ दिया। और जब तक हम इस भाव से नहीं सुनते कि बाबा की मुरली मेरे लिए ही चल रही है, तब तक मुरली सुनते सुनते नींद भी आ जाएगी, यहां बैठे बैठे भी नींद आ जाएगी, क्लास में भी नींद आ जाएगी, क्योंकि पता ही नहीं कि हम लोग क्या सुन रहे हैं, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है ना। नहीं ऐसा होता है, होता है नहीं होता बताइए, ऐसा होता है ना। तो अभी हमको इस गहराई में समझना है दिल क्या चीज है ना। जैसे कोई वैज्ञानिक होता है, मैं फिर एग्जांपल देता हूं आपको, हम सभी के सभी भूमि को यूज करते हैं, धरती को यूज करते हैं, जल को यूज करते हैं, रोज हर चीज में, खाना बनाने में भूमि क्या चीज है, ये सब्जियां अनाज कहां से पैदा होता है, सब्जियां कहां से पैदा होती है, जमीन से पैदा होती है, जल कहां से आता है, कुएं से आता है या कहीं से भी ट्यूबवेल से आता है, कहीं से भी हमारे घर में या नदी से आता है ना। जल को यूज करते हैं, वायु को यूज करते हैं, सांस लेते हैं, वायु के बगैर रह भी नहीं सकते, अग्नि को यूज करते हैं, खाना बनाने में अग्नि यूज होती नहीं होती, और स्पेस को भी, आकाश को भी यूज करते हैं। किंतु वैज्ञानिक क्या करता है, वैज्ञानिक हर बात को बहुत गहराई से परखता है। एक साइंटिस्ट था, दो भाई थे साइंटिस्ट, उन्होंने देखा सब्जी उबल रही है ना, एक उसमें बर्तन में सब्जी उबल रही थी, तो उसके ऊपर ढक्कन रखा था, तो जैसे सब्जी गर्म होने लगी, गैस बनने, वो स्टीम बनने लगी, तो वो ढक्कन ऊपर उछलने लगा, तो उसने क्या समझा, इस स्टीम में इतनी ताकत है कि ढक्कन को भी ऊपर कर सकती है, तो उसने उसे स्टीम इंजन बना दिया, कोले से गर्म करके, और उसने जो गैस बनी उस गैस के द्वारा उसने पुश किया, तो वो स्टीम इंजन बन गया है ना। इंजन जो बना ना, जो पहले इंजन कोयले वाले इंजन बनते थे ना पहले, जो बड़े बड़े गाड़ियां लेके जाते थे, ऐसे एक साइंटिस्ट ने एरोप्लेन बना दिया देख के, चिड़िया को देख के है ना। चीज तो हम भी वो रोज वो देखते हैं, हम लोग बनाते हैं क्या, उनका नाम हो गया है ना, न्यूटन ने नियम बना दिए है ना। तो मतलब वो कैसे बन गए, वो सबके सब जो चीजें बनती हैं वो सबके सब गहराई से ऑब्जर्व करने से बनती है। कोई बात भी देखो, समझो, सुनो, देखो और फिर उसको कर्म में लाना, सोचो फिर कर्म में लाते, फिर बोलो फिर कर्म करो, तो उस महीनता में जाने से फिर हमारा जीवन बदलता है। तो चलिए अब जैसे हम इसकी तो वैज्ञानिक का नाम हो गया, ऐसे सही महीनता में जो जाते हैं वो महान बन जाते हैं, ज्ञान की जो महीनता में बारीकियों में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, वो महान बनते हैं, वो 108 की माला के दाने बनते हैं। क्या फर्क है 108 की माला का दाना बनना और प्रजा में आना या दास दासी बनना, क्या फर्क है। मुरली तो वही सुन रहा है, अमृत वेला तो वो भी कर रहे हैं, मुरली तो सुन रहे हैं, सब कुछ वो ही कर रहे हैं, शुद्ध अन्न भी खा रहे हैं, पवित्र भी रह रहे हैं, कहां फर्क है? फर्क इसमें है। तो शुद्ध, अब देखिए हम लोग चलते हैं इस बात पर, तो अगर हमें 108 की माला में आना, अच्छा जो 108 की माला में आना चाहते हैं हाथ उठाओ जरा, देखें कौन कौन आना चाहते हैं। सभी आना चाहते हैं, वेरी गुड। तो 108 की माला तो यहीं से तैयार हो जाएगी, है ना? बाबा ने कहा पर सभी हाथ उठा सकते, क्योंकि बाबा फिर माला लड़िया ऐड कर देगा ना, बाबा ने कहा ना। तो जो आत्मा है अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, बाबा ने कहा ना, इन आंखों से देख नहीं सकते। और आत्मा के पास तीन शक्तियां हैं, हम इसी गहराई में पहले चलते हैं, मन क्या, दिल क्या चीज है, मन क्या चीज है, फिर उसको बाद में खुश और वावा बनाने की बात करते हैं, ठीक है? तो जो आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, और उससे उसके पास तीन शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार है। मन को कहते हैं सोचने की शक्ति, बुद्धि को कहते हैं निर्णय करने की शक्ति, और संस्कार, जो चीज हम बार बार करते हैं वो हमारी संस्कार माना आदत बन जाती है। संस्कार माना कुछ और नहीं, आदत बन जाती है। क्योंकि जो कुछ हम सोच रहे हैं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो सब यहां रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है, हर चीज रिकॉर्ड, यही हमारे संस्कार बनते हैं। तो आत्मा से तीन शक्तियां होगी। अब आत्मा कैसे शरीर को चला रही है? आत्मा है तो शरीर चल रहा है, आत्मा निकल गई तो क्या होता है? शरीर कुछ भी काम नहीं करेगा, हार्ट काम नहीं करेगा, सांस नहीं ले सकते, पेट में खाना बचेगा नहीं, दाढ़ी में बाल उगेंगे नहीं, वहीं रुक जाएंगे, है ना? खाना जहां रखा है वहीं के वहीं रुक जाए, वहीं से वहीं रुक जाएगा, उसके आगे खाना आगे नहीं जाएगा, खून एकदम पानी हो जाएगा, खून क्लॉट हो जाएगा एकदम से, बहना बंद हो जाएगा, आत्मा का निकलते ही बंद हो जाएगा। तो क्या चीज है आत्मा, आत्मा से शरीर में जाती है जिससे शरीर जिंदा रहता है, हर चीज काम करती है? तो आत्मा के पास सात एनर्जी है, जिसे हम सिंपल भाषा में सात गुण कहते हैं। तो आत्मा के पास सात गुण कौन से? पहला गुण ज्ञान है। बाबा भी पहले ज्ञान का सागर है, फिर पतित पावन है, हमको ज्ञान सुना के पावन बनाता है, दृष्टि देके पावन नहीं बनाता है। नहीं तो बाबा आवे दृष्टि देके चला जावे, बस काम पूरा हो गया। ज्ञान सुनाता है, उस ज्ञान को हम अपने जीवन में लाते हैं, उससे पावन बनते हैं। तो परमात्मा जो है शिव बाबा, वो हमको ज्ञान सुनाता। तो ज्ञान, ज्ञान माना क्या है? ज्ञान माना समझ है, ज्ञान माना समझ। पहले हमें समझ नहीं थी, हम अपने को देह समझते थे, देह के संबंधों को, पति पत्नी को, पति को, बच्चे को, मां बाप को, चाचा को, काका को, दोस्तों को अपना संबंध समझते थे, ये हमारे असली संबंध है, इसी के लिए दिन रात लगे रहते थे। किंतु बाबा ने आके कहा, बच्चे तुम ये नहीं हो, तुम अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हो, इस देह को चलाने वाली आत्मा हो, ये समझ बाबा ने दी। फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारा संबंध सब मेरे साथ है, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, क्योंकि तुम अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हो, मैं भी ऐसा ही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा हूं। फर्क क्या है? मैं निरंतर परमधाम में रहता हूं, तुम परमधाम से 84 जन्म पाठ बजाने के लिए धरती पर आते हो, मैं पूरे 5000 साल में एक बार आता हूं, तुम 84 जन्म यहीं लेकर के फिर पाठ पूरा करके ऊपर जाते, मेरे पास आते हो, तुम्हारे सर्व संबंध मेरे साथ हैं। अर्थात संबंध, हम आरती में गाते ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम्हारा मैं माता भी हूं, पिता भी हूं, शिक्षक भी हूं, सतगुरु भी हूं, बंधु भी हूं, सखा भी हूं, साजन भी हूं, सर्जन भी हूं, और बच्चा भी हूं। मुख्य 9 संबंध है हमारे बाबा के साथ, है ना? ऐसे तो सारे संबंध, कोई भी संबंध लगा सकते हो, किंतु बाबा के साथ मुख्य हमारे 9 संबंध है। और फिर बाबा इस संसार के बारे बताते हैं, बच्चे संसार एक नाटक है, ये ड्रामा जो है, एक संसार एक नाटक, संसार एक ड्रामा है, इस ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, और मैं इसका डायरेक्टर हूं। बाबा कहता है हमें समझ दे रहा है और मैं इसको कर्म सिद्धांत के अनुसार डायरेक्ट कर रहा हूं। कर्म सिद्धांत माना जो आपके मां बाप बने हैं, जो आपके बच्चे बने हैं, जो आपके पति या पत्नी बने हैं, जो आपके दोस्त बने हैं, वो पिछले जन्म के आपके संबंधी हैं और उनके साथ जो जो आपने किया है, दुख दिया है, सुख दिया है, गाली दी है, धोखा दिया है, वो इस जन्म में आपके ये बनकर के संबंधी बनके आपको देंगे। ठीक है, और मैं इसी हिसाब से इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। अगर कोई शिव बाबा को बोले बाबा ये देखो मुझे ना मेरा दोस्त है, मुझे बहुत धोखा दिया इसने, अभी भी धोखा देता रहता है, ये मेरा पति है मुझे हर समय दुख देता रहता है, मैं इसकी इतनी सेवा करती हूं और ये मुझे हमेशा ही तंग करता रहता है, कभी संतुष्ट नहीं होता है, ये मेरा बच्चा है मेरा कभी संतुष्ट नहीं होता है, आप इसको ठीक कर दो ना, तो बाबा ठीक करेगा उसको, करेगा कि इसको दुख नहीं देना आगे से, ऐसे बोलेगा उसको बाबा, उसको कहेगा बच्चे और ज्यादा इसको दूसरे को बोलेगा कि इसको दुख दो और ज्यादा ब्याज लगा के दो, तो मैं इसको चुक मैं इसका बंधन मुक्त करने के लिए आया ताकि इसका बंधन पूरा हो जावे। किंतु अगर आप बाबा को याद करेंगे सच्ची दिल से तो बाबा क्या करता है, अंदर सहन करने शक्ति भर देता है ताकि दुख भी वो पूरा हो जाए उसका। आपने दुख दिया वैसे दुख दे रहा है पिछले जन्म में, आपने धोखा दिया इसलिए आपको धोखा दे रहा है, दे रही है, और आप बाबा को याद करते हो तो वो सहन कर सकते हो, सहन करने शक्ति बाबा से आ गई। तो ये बाबा इस तरह से डायरेक्शन दे रहा है ड्रामा को। तो मेरा बीठा बाबा इसका डायरेक्टर है और कर्म सिद्धांत के अनुसार इसको एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ है। किसने दुख दिया, धोखा दिया, गाली दी, सास ससुर ने कुछ कहा, दोस्तों ने कुछ कहा, बिजनेस में घाटा हुआ, बच्चों ने कुछ कर दिया, तो जो अभी तक हुआ है वो अच्छा हुआ है, बुरा नहीं हुआ है, और जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है, अभी तो हमको सारे विश्व का मालिक मिल गया है ना, सारे विश्व का मालिक, पांचों तत्वों का मालिक मिल गया है, हर मनुष्य आत्मा का बाप है जो, वो मिल गया है, वो मेरा बन गया है, उसने मुझे अडॉप्ट कर लिया, तो अभी क्या होगा, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है और जो हो रहा है वो उससे भी अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो क्या होगा, वो तो बहुत अच्छा होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, क्या होने वाला है, सत्युग में जाएंगे, हीरे जवाहरात के महल में रहेंगे, 2500 साल कोई नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, खाना बनाना नहीं पड़ेगा, है ना, कोई किसी कुछ काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस सारा दिन डांस करना है और क्या करना है, गीत गाना है और सोना है ना, तभी सोने की दुनिया ना, वो कोई चिंता ही नहीं है एकदम किसी बात की भी ना, कोई बीमारी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई जेल नहीं, है ना, कोई वकील नहीं, ना आम आदमी है, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना? ना? कोई पार्टी नहीं है, बिना पार्टी की दुनिया है ना, एक लक्ष्मी नारायण है, उनको हर बच्चा हर प्रजा का एक एक मेंबर भी उसको अपना बच्चे जैसा लगता है ना, सबके प्रति प्यार ही प्यार बेशुमार है, आपस में इतना प्यार है ना, तो अच्छे से अच्छा होने वाला है। तो ये जो है ज्ञान है बेसिकली, ये समझ बाबा हमको देता है। तो अगर सार रूप में देखें तो क्या बन जाता है, ये चार बातें हैं, एक तो आत्मा का ज्ञान है, दूसरा परमात्मा का ज्ञान है, तीसरा संबंध का ज्ञान है, मेरा उससे क्या संबंध है, और एक चौथा नाटक संसार रूपी ड्रामा क्या है। तो क्या बन गया, ए बी सी डी, ए फॉर आत्मा, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, बी फॉर बाबा, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु बाबा की संतान हूं, सी फॉर कनेक्शन, अर्थात मेरा योग उसके साथ है, मेरा हर संबंध उसके साथ है, वही बताया जो पांच नौ संबंध रहे ना, माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा साजन और सज्जन, बच्चा नौवां, और फिर ड्रामा, संसार एक ड्रामा है, इस ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। इसलिए जो अभी तक हुआ बाबा इसका डायरेक्टर है और कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है, इसलिए अभी तक जो हुआ अच्छा हुआ है और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। समझ रहे हैं सभी? तो जितना ये एबीसीडी है ना, ये एबीसीडी आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, तो जितना हम एबीसीडी को रिवाइज करते जाते हैं, रिवाइज माना मनन, और रियलाइज करते हैं, रियलाइज माना, रियलाइज में तीन बातें आती हैं, चिंतन, मंथन और सिमरण। रियलाइज माना रियल को रियलाइज कर रहे हैं, जो मैं हूं उसको हम रियलाइज कर रहे हैं, मैं ये हूं, मेरा वो है, मेरे सारा संबंध उसके साथ है, और ये जो नीचे हो रहा है सारा ड्रामा में, संसार में ड्रामा हो रहा है, ये कर्म सिद्धांत के अनुसार हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, और जो होने वाला है अभी जो हम कर्म करेंगे उसके अनुसार होगा। आगे जो सा पद मिल रहा है वो किस अनुसार मिलेगा? जो हम कर्म करेंगे, राइट। तो जितना इससे हमारी बुद्धि और मन पवित्र होता जाता है, तो जितना एबीसीडी को हम रिवाइज और रियलाइज करते हैं उतना हमारी बुद्धि पवित्र होती जाती है। तो ज्ञान से पवित्रता आती है, दूसरी जो एनर्जी है वो पवित्रता है। तो जितना अधिक हम ज्ञान को रिवाइज और रियलाइज करते हैं उतना ही अधिक हमारी बुद्धि और मन पवित्र होता जाता है, ठीक है। तो एबीसीडी से पवित्रता आती है, अर्थात ज्ञान से पवित्रता आती है, और पवित्रता जब आ जाती है, बुद्धि पवित्र हो जाती है, तो हमारे संकल्प कम चलने लगते हैं, संकल्पों की स्पीड कम हो जाती है, उसको हम शांति कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? शांति। शांति किसे कहते हैं? शांति की परिभाषा क्या है? शांति माना पॉजिटिव और कम विचार। विचारों का ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, विचारों का ट्रैफिक रुक गया, ठहर गया, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट विचार हैं, जो जरूरी विचार हैं, वो ही आ रहे हैं, उसे कहते हैं शांति, ठीक है। देखो हमारे मन जो है ना, मन के तीन पार्ट हैं, मन के तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट है अनकॉन्शियस पार्ट। लगभग हमारा 70-75% पार्ट हमारा मन अनकॉन्शियस पार्ट होता है। अनकॉन्शियस इसके हमें होश नहीं है, अचेतन पार्ट, जो कि पिछले जन्मों का होता है, जो हमने पिछले जन्मों में किया, 84 जन्मों में जो हमने किया, 83 जन्म में जो हमने किया, वो सब अंदर रिकॉर्ड हुआ होगा। 83 जन्म से जो हमने जो पाप किए हैं, हमें इस जन्म में याद नहीं है, किंतु वो भी अंदर रिकॉर्ड है, वो अनकॉन्शियस माइंड में है, अचेतन मन में है, जिनका हमें कुछ याद नहीं है। दूसरा पार्ट है सबकॉन्शियस पार्ट, वो इस जन्म का पार्ट है, जो कुछ हमने इस जन्म में किया अपनी याद में नहीं किया, बचपन में किया हमें पता नहीं है, इस जन्म में भी जो हमारे बस में नहीं, हम करते रहते हैं, बहुत सारे काम हम करते हैं जो हमारे बस में नहीं होते, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। और अनकॉन्शियस माइंड जो हमारे कंट्रोल में है, सिर्फ 8% मन हमारे कंट्रोल में है। तो अभी हमारे पास अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड लगभग 10-15% और कॉन्शियस माइंड सिर्फ 8%, और जो फरिश्ते होते हैं उनका 100% मन कॉन्शियस होता है, अर्थात उनके अंदर फुल कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होती है। कॉन्शियस माइंड पे तो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होगी ना। अब हमारी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर किस पे? सिर्फ कॉन्शियस माइंड पे है। सब जैसे हम सोते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, सपने आने लगते हैं उससे, सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड को हिंदी में चित्त कहते हैं, तो उससे हमारे सपने आने लगते हैं हमको, है ना। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव, सपने आने शुरू हो गए, तो सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे विचार चलने शुरू हो जाएंगे अपने आप ही, बैठे बैठे यहां बैठे हैं विचार चलने शुरू हो गए, बच्चों के विचार आ रहे हैं, घर के विचार आ रहे हैं, जहां आप रहते हो वहां के विचार आ रहे हैं, ये क्या कौन से विचार हैं? सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। यहां जैसे आपको थोड़ी शांति अनुभव होगी, नींद आ जाएगी और सपने शुरू हो जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड से शुरू हो गए। तो हमारा कर्म क्या है कॉन्शियस, अभी हमको तीनों मन को सफाई करनी है। अनकॉन्शियस माइंड पिछले विकर्मों का कारण है, कॉन्शियस माइंड इस जन्म के विकर्मों का कारण हुआ है, और अनकॉन्शियस माइंड भी साफ नहीं है हमारा, क्योंकि विकारों के कारण, वो भी विकार अभी तक खत्म नहीं हुए तो उसमें भी अभी गलतियां हैं। तो फरिश्ता माना इस 100% कॉन्शियस माइंड, फरिश्ता माना 100% ट्रांसपेरेंट माइंड, आर पार दिखाई देने वाला लाइट, लाइट का बना हुआ मन, उसे कहते फरिश्ता। तो विक्रम विनाश करने का मतलब क्या है, राजयोग के द्वारा विक्रम विनाश करना माना कि हमारे अंदर इतनी बाबा के साथ इतनी लगन हो, इतनी शक्ति हम खींचे बाबा से, सात गुणों को इतना खींच लें कि वो हमारी पुरानी मेमोरीज खत्म हो जाएं और हमारा जो मन पहले इस जन्म के विकार विक्रम विनाश हो, फिर पिछले जन्मों के नंबर वाइज शुरू होंगे, 63 जन्म का, पहले 83 में जन्म का, फिर 82 में जन्म का, फिर 81 में जन्म का, ऐसे ऐसे खत्म होते जाएंगे। और जब हम 21वें जन्म में पहुंचेंगे तब हमारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, तब हम फरिश्ता बन जाएंगे। ये रिटर्न जर्नी है ना ऐसे करके, तो इस तरह से हमको सारे अपने विक्रम विनाश करने पड़ेंगे। तो ये जो है, तो मैं बात कर रहा था आपसे सात गुणों की, तो ज्ञान से पवित्रता है, पवित्रता से शांति है, और शांति से फिर रूहानी प्रेम है। जब शांति आ गई, विचार कम हो गए, तो हम एक दूसरे की फीलिंग्स का हम केयर करने लगते हैं, तब हमें समझ आता है कि इसकी बेचारे की फीलिंग क्या है, ये क्या फील करता है, ये क्या फील करती हैं, दूसरों की रिगार्ड हमारे मन में पैदा होने लगती है। इसको कहते हैं लव, रूहानी प्यार। इंग्लिश जो प्यार की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, प्यार की परिभाषा है, प्यार की परिभाषा का अर्थ क्या है, केयरिंग विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, सामने वाले की हम केयर करें और उनकी रेस्पेक्ट, आदर के साथ उनकी केयर करें। एक मां अपने बच्चे की बहुत केयर करती है, किंतु वो उसकी उसको डांटती रहे तो बच्चा क्या कहेगा, मेरी मां मुझे प्यार करती है क्या, नहीं कहेगा, कहेगा मेरी मां मुझे बहुत डांटती है, मुझे बहुत टोकती रहती है हर समय। तो जब हम उसको एक इंडिविजुअल लेकर के उसे केयर करते हैं, मां उसका केयर भी करती है, सारे उसको राजा, मेरा राजा बेटा है, राजा बेटा राजा, ऐसे करती है, तो बच्चा कहता हां मेरी मां मुझे प्यार करती है। ऐसे एक पत्नी अपने पति की बहुत केयर करती है, कपड़े भी धोती है, खाना भी बनाती है, सब कुछ, हर चीज का ध्यान रखती है, क्योंकि बार बार उसको टोकती रहे तो क्या क्या कहेगा पति, अभी कहेगी तुम देर से आए हो, तुमने ऐसा किया, तुमने, तो क्या कहेगा पति, कोई पूछे पति से तुम्हारी पत्नी तुमको प्यार करती है, तो क्या बोलेंगे पति, क्या बोलेगा, अरे प्यार वो तो मुझे हर समय टोकती रहती है, हर समय डांट, मुझे घर में जाने को दिल नहीं करता है। जब हर उस आदमी को इंडिविजुअल लेके उसकी हम केयर करते हैं तो उसको प्यार कहते हैं, रूहानी, रूहानी लेवल पे ना, आत्मिक लेवल पे प्यार करना। इस रूहानी प्यार से हमको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति से फिर हमें आनंद की अनुभूति होती है, और जिस चीज में हमें आनंद की अनुभूति होती है उसमें हमें क्या होता है, फिर शक्तियां प्राप्त होती हैं, परखने की शक्ति, परखने की शक्ति माना राइट और रॉन्ग, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, फिर निर्णय करने शक्ति आती है, जो राइट है उसके लिए निर्णय करना, फिर बड़ी से बड़ी, उसके लिए बड़ी से बड़ी बात छोटी कर देना, पहाड़ को राई बना देना, फिर समेटने की शक्ति, फिर उससे सहन करने की शक्ति आती है, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, आठ शक्तियां आती हैं। तो आत्मा से सात एनर्जी निकलती रहती हैं, सीक्वेंस में निकलती हैं, और जो एकदम यहां जो हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी का जंक्शन, यहां पे आत्मा रहती है, और इस सातों एनर्जी को कन्वर्ट करने का, सातों एनर्जी को, सातों ऊर्जा, सात गुणों को कन्वर्ट करना मेंटल एनर्जी, वो मन में परिवर्तन होती है, मानसिक ऊर्जा में परिवर्तन होती है। तो सात गुणों से हमारी मानसिक ऊर्जा बनती है, अर्थात हमारी स्मृतियां बनती हैं, वृत्ति बनती है, भावना और संकल्प पैदा होते हैं यहां पर। तो ये सात गुण जो है यहां पर आत्मा के, यहां से निकलते रहते हैं, सारे शरीर में फैलते रहते हैं, इससे हमारा शरीर चलता है। और जहां पर ये सबसे ज्यादा एनर्जी है, सात गुणों की एनर्जी है, उसको दिल कहते हैं, उसे इंग्लिश में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, हिंदी में अंतरात्मा भी कहते हैं, उसी को कॉन्शियंस भी कहते हैं। यह है आत्मा का दिल, और ये दिल जो है ये सदा ही दिल सातों इंद्रियों से भरपूर है, मतलब सात गुण भरे रहते हैं इसके अंदर। सतो प्रधान आत्मा में बहुत ज्यादा होता है, सत्युग में हमारा बहुत ज्यादा, सातों गुण बहुत ज्यादा थे, तो दिल हमारी सच्ची और साफ थी। सच्ची दिल, साफ दिल किसे कहते हैं? जिस दिल में ये सातों गुण बहुत भरपूर हो, अर्थात उसके दिल में ये बात स्मृति में हो, हमेशा स्मृति में हो कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा के संतान हूं, मेरे सर्वसंबंध उसके साथ हैं, दुनिया में मेरा फर्ज है पति के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, फैक्ट्री में या ऑफिस में, वहां सिर्फ मेरा फर्ज है, बल्कि बंधन है, पिछले जन्मों का बंधन है वो, जो मुझे इस संबंध के थ्रू काटना है, निभाना है। संबंध यहां है शिव बाबा से, और यहां पर नीचे क्या है? बंधन है और ड्रामा है, संसार एक नाटक है। पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ये सातों शक्तियां, सातों एनर्जी सत्युग में फुल थी हमारे अंदर आत्मा, इससे दिल सतो प्रधान था, सच्ची दिल साफ दिल थी। तो सच्ची दिल साफ दिल, ये इसे कहते हैं सच्ची दिल साफ दिल। और उसके बाहर विवेक है, इन सात गुणों के मिश्रण से क्या बनता है? विवेक बनता है। विवेक माना परखने की शक्ति। जब ज्ञान होगा, पवित्रता होगी, शांति होगी, रूहानी प्यार होगा, अतिंद्रिय सुख होगा, आनंद होगा, तभी तो परखने की शक्ति आएगी, कहां से? नहीं तो परखने की शक्ति कहां से आएगी? इसको कहते हैं विवेक, और विवेक से बनती है बुद्धि, बुद्धिमान, निर्णय करने की शक्ति। जब हमने परखा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या, तो बुद्धि बनी, बुद्धि प्रॉपर। और फिर इसके बाद है चित्त, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड माना चित्त। अब जो बात दिल को अच्छी लगती है, दिल ने माना ठीक है, तो पहले विवेक उसको परखता है, फिर बुद्धि निर्णय करती है, और बुद्धि निर्णय करने के बाद फिर वो, अगर आपने ठीक निर्णय कर लिया तो वो मेमोरी में चली जाती है, अर्थात मन में चली जाती है, और नहीं, अगर आपने निर्णय नहीं किया बात का, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, अर्थात चित्त में चली जाती है। अब ये मैं आपको यहां बताता हूं कि सतो प्रधान, जब बुद्धि सतो, जब हमारे दिल सतो प्रधान है, सातों गुण से भरपूर है, तो फिर हमारी दिल सच्ची और साफ है, और सच्ची और साफ दिल है तो खुश दिल है। जहां थोड़ी भी गंदगी है ना, तो वह दिल खुश नहीं हो सकती है। गंदगी क्या होती है? जैसे ही हम सत्युग त्रेता में, तो हम हमारी सातों गुण काफी हैं, किंतु जैसे ही हमारा ये शुरू होता है, द्वापर युग शुरू होता है, सातों गुण आधे से कम हो जाते हैं। ज्ञान की बजाय अज्ञान आने लगता है, पवित्रता कम होने लगती है, शांति कम होने लगती है, प्रेम प्रेम सुख आनंद शक्तियां, जैसे 50 से 49% होते हैं, तो क्या होता है? मन राजा बन जाता है। पहले आत्मा राजा थी, फिर मन राजा बनने लगता है। मन का कनेक्शन 5 कर्मेंद्रियों से रहता है, आंख से, नाक से, कान से, मुख से और त्वचा से, कर्मेंद्रियों से। फिर ये बाहर की चीज अच्छी लगने लगती है इसको, वो बाहर देखने लगता है, बाह्यमुखी हो जाता है। मन हमेशा बाह्यमुखी होता है, वो बाहर देखेगा, आज तो मौसम बहुत अच्छा है, इसके नयन नक्ष तो बहुत अच्छे हैं, इसका शरीर तो बहुत अच्छा है ना, फिर देह की तरफ आकर्षण जाने लगता है। द्वापर युग इस तरह से देह की तरफ आकर्षण जाता है। जैसे अगर कोई कंपनी में भी आप देखें, जिसके 51% शेयर होते हैं, कंपनी का MD वो होता है, कंपनी का मालिक वो होता है, ट्रस्टीज उसके होते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उसके होते हैं, डायरेक्टर वो होता है। किंतु जब वो, जब उसके शेयर 49% हो जाते हैं, तो कंपनी का मालिक बदल जाता है। ऐसा होता नहीं होता है? ऐसा होता है। तो इस तरह से हमारा जब मन जो है, फिर मन के पास 51% शेयर आ जाता है, तो मन मालिक बन जाता है। फिर हमारी देह पर नजर जाने लगती है, प्रकृति पर नजर जाने लगती है, अच्छा बुरा दिखाई देने लगता है, उससे काम विकार जागृत होता है, फिर काम के साथ क्रोध जागृत होता है, फिर जिससे हमारा बंधन बन जाता है, उसके लिए हम लोभ करते हैं। उसके सब कुछ उसको दे दो, बाकी सबसे चाहे दूसरों को मारना ही पड़े तो कोई हर्जा नहीं। फिर मोह आता है, फिर लोभ आता है, फिर मोह आता है, और फिर जो हमने प्राप्त कर लिया इससे पावर से उसके ऊपर अहंकार आता है। तो इस तरह पांच विकार जागृत होते हैं। तो धीरे धीरे आत्मा के सात गुण कम होते जाते हैं, और अब दिल में क्या होता है, अब दिल में देह जाने लगती है, हमारी कॉन्शियसनेस में हमारी देह जाने लगती है, हमारी और दूसरों की देह जाने लगती है, मतलब हम बॉडी कॉन्शियस होने लगते हैं, देह के संबंध दिल में चले जाते हैं, कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, देह के स्वभाव संस्कार कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। देह के स्वभाव क्या है, देह के स्वभाव ये पांच विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये पांच विकार जो है क्या है, देह के स्वभाव है, और देह के संस्कार क्या है, देह के संस्कार आलस्य। सबसे पहला संस्कार देह की आदत क्या है, आलस्य। देखो यहां बैठे बैठे भी होंगे ना, रात को नींद कम की थोड़ा सो जाते हैं, थोड़ा पीछे जाके बैठते हैं वहां जाके सो जाएंगे, है ना, नहीं ऐसा होता, ऐसा होता नहीं होता है। देह समझता ही अपने आप को, अरे मैं तो अभी 70-75 ईयर्स का हो गया, अब आफ्टर कितनी कितना हम सुने, देह की आदत है सोना, आलस करना, देह की आदत है अलबेलापन, केयरलेस होना, केयरलेस हो जाएंगे, अपने आप ही केयरलेस हो जाएंगे, छोड़ो ना, क्या क्या करना है, क्लास अटेंड कर, क्या करना है योग करके, अमृत वेला कर, क्या करना है मुरली सुन के, हम कल शाम को पढ़ लेंगे, चलो कोई बात नहीं, सुबह नहीं, सुबह ड्यूटी पे जाना, शाम को पढ़ लेंगे, तो अलबेलापन। देह का संस्कार है दूसरों में दोष निकालना, मैंने गलती नहीं की इसके कारण, इसने किया ना ऐसा तो मैंने ऐसे गलती की, दूसरे में दोष निकाल, हर बात के लिए दूसरे में दूसरे को दोषी ठहरा देना। देह की आदत है बदला लेने की भावना रखना, किसी ने थोड़ा सा कुछ गलत कर दिया हमारे खिलाफ तो उसके प्रति बदला लेने की भावना रखेंगे। देह की आदत है शक करना, देह की आदत है अलबेलापन रखना, देह की आदत है अनुमान लगाना, देह की आदत है चिंता करना, देह की आदत है डर लगना, और देह की आदत है जल्दीबाजी करना, कंपैरिजन कंपटीशन करना, और देह की आदत है ईर्ष्या करना। तो देह का स्वभाव है पांच विकार, और देह के संस्कार ये दस जो मैंने बताया आपको, और इनके फिर आगे बच्चे हैं बहुत सारे, दस दस बच्चे और भी हैं इनके, सो 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 हो गए ना, दस दस के दस बच्चे कितने सो हो गए ना, इनकी पूरी सेना है ना। तो देह के संस्कार स्वभाव, देह के पदार्थ, जो भी आपका मकान है, जायदाद है, कार है, आपके अपने कपड़े हैं, घर की बहुत सारी चीजें हैं, तो अभी हमारी देह में घुसने लगती हैं ये चीजें, हमारी कॉन्शियसनेस में चली जाती, दिल में चली जाती है। अब देखो दिल में क्या चला गया, देह चली गई। अब इस देह को थोड़ा कुछ होता है ना, कहीं भी कुछ हो गया, अच्छा आपकी देह को कुछ नहीं हुआ, आपकी पत्नी की देह को हो गया, आपके पति के देह को कुछ हो गया, आपकी मां को कुछ हो गया, तो क्या होता है, सारा दिन क्या लग रहे थे दिल में, क्या होता है दिल में, बेचैनी हो जाती है ना, कितनी दिल में बेचैनी होती है, मुझे ये हो गया, मेरा बीपी ज्यादा रहता है, मेरी शुगर आज सुबह देखा 300 थी, है ना, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में, सारा टाइम बैठेंगे बाबा को याद करने, और दिल में जो होगा वही तो याद आएगा ना, नहीं होगा, होता नहीं होता। तो ये देह दिल में घुस गई है, देह के संबंधी दिल में घुस गए हैं, देह का स्वभाव संस्कार, क्रोध तो मेरे को, क्रोध के बगैर तो मैं रह नहीं सकती हूं, क्रोध तो मुझे आता ही है, बचपन से ही आता है, पैदा हुए तब भी क्रोध आता था क्या, पैदा होते ही मां को गुस्सा किया था क्या, नहीं था, ये यहां के सीखा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यहां के सीखा है, आलस करना, अलबेलापन यहां सीखा है, चिंता करना, भय लगना, शक करना, अनुमान लगाना, जल्दीबाजी करना यहां सीखा है, ईर्ष्या द्वेष करना यहां सीखा है, ये देह के संस्कार हमने यहां पढ़े हैं, हमको आने के बाद देह के पदार्थ है ना, कोई कुछ एक सुई भी साथ में नहीं जाती है, सारा टाइम बुद्धि इसमें लगी रहती है, बाबा का बच्चा बनने के बाद भी बुद्धि वहीं लगी रहती है, एक दिन क्रीम पाउडर नहीं होगा ना, क्रीम नहीं होगी मुंह पे लगाने की, तो क्लास में भी आएंगे, रहे आज तो क्रीम नहीं लगाई, मुंह ड्राई ड्राई लग रहा है, अरे कंघा नहीं होगा ना, एक कंघा खो गया होगा तो यूं करेंगे, फिर बाद में शीशा कहीं देखेंगे तो फिर देखे ठीक करेंगे ना, बाल ठीक है कि नहीं है, कंघे में भी इतनी बुद्धि रहती है ना, नहीं रहती है, उसके बगैर योग लगता ही नहीं, कंघा ठीक बाल ठीक ना हो तो ना। उस दिन कंघा नहीं होगा, ये नहीं होगा तो आज क्लास में नहीं जाएंगे, वहां लोग क्या कहेंगे बाल भी ठीक नहीं करके आए, है ना। तो मतलब इतना देह के अंदर देह के पदार्थ जो होते छोटे 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 पदार्थ वो भी हमारी कॉन्शियसनेस में घुस गए हैं, उसके कारण इस दिल को असर होता है नहीं होता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे बच्चा बीमार हो गया, कोई किसी ने कुछ कह दिया, वो बात दिल को लग गई, अब ये इस दिल पे असर होगा नहीं होगा। मेरी भावना हर्ट हो गई, मेरी ईगो हर्ट हो गई, है ना, कहते हैं ना मेरी ईगो हर्ट, उसने मेरी ईगो हर्ट कर दी, तो ये दिल है ना, तो ये दिल गंदी दिल है, झूठी दिल है। जिस दिल में देह है, देह के संबंध है, देह के स्वभाव संस्कार है, देह के पदार्थ है, वो दिल खुश दिल नहीं है, वो दिल दुखी दिल है, परेशान दिल है। ठीक है, समझ में, दिल खुशी किसे कहते हैं, सच्ची दिल किसे कहते हैं, सच्ची दिल खुश दिल उसे कहते हैं जिस दिल में सिर्फ एबीसीडी के अलावा कुछ भी ना हो, जिस दिल में सिर्फ एबीसीडी हो, मैं आत्मा हूं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं, और मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, इनके साथ नहीं है, इनके साथ मेरे फर्ज हैं जो मुझे निभाने हैं, पर कब निभा सकता हूं, जब उससे वो एनर्जी मिले तो। अब बच्चे हैं, युगल है ना, माता पिता हैं, दोस्त हैं, भाई बहन है, हॉस्पिटल है, कुछ भी है, सबको क्या चाहिए, सबको क्या चाहिए, वो जो मर्जी करते हैं मैं शांत रहूं, वो जैसा मर्जी बिहेव करे मैं सबके सबसे प्यार से बात करूं, नहीं तो कहां से लाऊं शांति प्यार, वो तो मुझे शांति प्यार देते नहीं है, ना हॉस्पिटल वाले देते ना घर वाले देते, तो कहां से मिलेगा, वो बाबा से मिलेगा, तो मैं उनको दे सकता हूं, तो सब कुछ कर सकता हूं। दुनिया में देखने से बुद्धि गंदी होती है कि तो पवित्रता कहां से मिले, बाबा से मिलेगी ना, तो जितनी बाबा सहन शक्ति चाहिए मुझे जीवन निभाने के लिए, घर में बाहर निभाने के लिए, कहां से मिलेगी, बाबा से मिलेगी। तो जितना मैं बाबा को याद करता हूं उतना सातों गुण मेरे अंदर आते हैं, सातों एनर्जी मेरे अंदर आती है, और सात एनर्जी आने से फिर मेरी ये दुनिया के फर्ज में अच्छे से निभा सकता हूं, और कहीं से नहीं मिलेगी, और तब इस ड्रामा रूपी संसार को साक्षियों के देख सकता हूं। ये तो फंस जाते हैं, इसने मेरी महिमा की उसके प्रति लगाव हो जाता है, किसने मेरी बुराई कर दी उसके प्रति टकराव हो जाता है, कोई बहुत अच्छा स्मार्ट व्यक्ति है उसको उसके प्रभाव में आ जाते हैं, किसके बहुत विशेषता है उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो लगाव, झुकाव, प्रभाव और टकराव, ये चार चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं। तो लगाव, झुकाव, प्रभाव और टकराव वाले को कभी भी उसकी दिल सच्ची और खुश दिल नहीं हो सकती है। तो सच्ची दिल और खुश दिल किसकी होगी, जो सातों गुणों से भरपूर होगा। मतलब इसमें एबीसीडी है, शांत पवित्रता है, शांति है, प्यार है, सुख है, आनंद और शक्तियां, वो सच्ची दिल है। और झूठी दिल कौन सी है, जिसमें देह है, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ है, वो झूठी दिल है, वो दुखी दिल है, परेशान दिल है। तो सच्ची दिल खुश दिल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस दिल में क्या करना पड़ेगा, पहले बार बार एबीसीडी को रिवाइज करना पड़ेगा, उससे बुद्धि पवित्र, उससे दिल पवित्र होती जाएगी, उससे दिल शुद्ध होती जाएगी, उससे दिल में शांति आएगी, उससे रूहानी प्यार पैदा होगा दिल में, उससे फिर अतिंद्रिय सुख की अनुभूति दिल में होगी, फिर आनंद की अनुभूति, उसे शक्ति आएंगी, उस शक्तियों से विवेक हमारा ईश्वरीय बन जाएगा, प्राथमिक शक्ति ईश्वरीय बन जाएगी, उससे हमारी बुद्धि दिव्य हो जाएगी, बुद्धि हमारी पावन बन जाएगी। जब सातों गुणों को, पावन बुद्धि किसे कहते हैं, पवित्र बुद्धि किसे कहते हैं, शुद्ध बुद्धि किसे कहते हैं, दिव्य बुद्धि किसे कहते हैं, जो बुद्धि सतो प्रधान सातों गुणों से भरी हुई हो उसे कहते हैं शुद्ध बुद्धि, पवित्र बुद्धि। तो दिल हमारी जब सत्व प्रधान है तो हमारी बुद्धि पावन है, और जिसकी बुद्धि पावन है उसका चित्त सबकॉन्शियस माइंड शांत और एकाग्र है, अर्थात सबकॉन्शियस चुप हो जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं। सबकॉन्शियस माइंड से बहुत सारे विचार उठते रहते हैं जो हमारे वश में नहीं होते, और जब हमारा चित्त शांत और एकाग्र होगा तो चित्त में वो जो अंदर दिल में आनंद है ना, वो चित्त में आ जाएगा। इसे कहते हैं सच्चित आनंद, अर्थात दिल में सत्य है तो चित्त में आनंद है। दिल में असत्य है, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतनी बड़ी हूं, तो दिल हमारा, तो चित्त हमारा चंचल है, अशांत है, परेशान है, राइट। तो ये है हमारा दिल, सच्ची दिल, साफ दिल समझ में आई आपको? खुश दिल किसे कहते हैं? ऐसी दिल में दिलाराम आके बैठता है, ऐसी दिल में आके दिलाराम समाता है, सच्ची दिल साफ दिल में। अब बाबा की जो मुरली थी, देखो मुरली वही सुनी, आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी ना, तो इस तरह से मंथन करते हैं, मनन चिंतन मंथन। अब ये बात निकली ना, इसको सिमरण करते रहो। स्वीट, स्वीट किसे कहते हैं? बाबा ने कहा बाबा स्वीट का पहाड़ है। स्वीट का पहाड़ माना सतो, सात गुण ही स्वीटनेस है, सात गुणों से मिलकर स्वीटनेस बनती है, देवता सातों गुणों से भरपूर हैं, इसलिए वो स्वीट कहलाते हैं। सतो प्रधान है, पावन इसलिए स्वीट है, और बाबा सातों गुणों का सागर है, इसलिए बाबा ने कहा बाबा स्वीट का पहाड़ है, सात गुणों का सागर है। और हमें क्या बनना है? हमें भी बाप समान स्वीट, सातों गुणों का मास्टर सागर बनना है, तो हम क्या बन जाएंगे? हम भी स्वीट बन जाएंगे, राइट। समझा आपने ये बात? तो स्वीट माना कोई मिठाई थोड़ी ना, कोई मिठाई है क्या? बाबा मिठाई, हम भी मिठाई बन जाएंगे? नहीं, बाबा सात गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, रूहानी प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, सर्व शक्तियों का सागर है। और जितना हम उसको अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, शिव बाबा को याद करेंगे, सात नौ के नौ संबंध से उसको याद करेंगे, एक एक संबंध में खो जाएंगे बाबा के साथ, उसी संबंध की स्थिति में खो जाएंगे और ड्रामा को साक्षी होकर देखेंगे, उतना अधिक वो सातों एनर्जी मेरे अंदर आती जाएंगे, सच्ची दिल साफ दिल, सच्चे दिल पर साहब राजी, और उतना हमारा विवेक क्या बनता जाएगा? ईश्वरीय बनता जाएगा, बुद्धि हमारी दिव्य बनती जाएगी, और चित्त हमारा शांत और एकाग्र और आनंदमय बनता जाएगा। उसके बाहर फिर मन है, मन में चार बातें होती हैं, स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प। स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प, स्मृति माना मेमोरीज, वृत्ति माना एटीट्यूड, भावना माना इमोशंस, और संकल्प विचार माना थॉट्स। इंग्लिश में उल्टा पढ़े तो क्या बन जाएगा? टीम बन जाएगा, टीम, थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। तो अगर अब जो है, जब हमारी दिल सतो प्रधान है, सच्ची साफ है, बुद्धि दिव्य है, पावन है, तो हमारी मेमोरीज में ये एबीसीडी आ जाएगा। अभी हमारी मेमोरी में क्या है, हमारी स्मृति में क्या भरा हुआ है? ये चार बातें, देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ भरे, जो दिल में है वो स्मृति में, और उस स्मृति से वृत्ति बनती है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है, और स्थिति से समर्थी आती है। अगर मुझे पता है मैं तो हार्ट पेशेंट हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं अगर अपने हार्ट पेशेंट तो कैसे कैसे होगी स्थिति, कैसी हो जाएगी मेरी चाल, कैसी हो जाएगी स्थिति, कैसी होगी चाल, ऐसे हो जाएगी जैसे पेशेंट की चाल होती है, और फिर समर्थ्य कैसी होगी, मुझे कहे भाई साहब वजन थोड़ा, मुझे वजन उठवा दो ना मेरा, ये इतना बड़ा वजन रखा है, इसको थोड़ी मदद कर दो ऊपर रखवाने में, कहते मैं तो हार्ट पेशेंट, मैं नहीं कर सकता हूं, समर्थ्य खत्म हो गई ना। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और उससे वैसी समर्थ्य आती है, और स्मृति से ही वृत्ति बनती है, वृत्ति में ना एटीट्यूड, दृष्टिकोण, नजरिया, तो वो वृत्ति जो है फिर हमारा वायुमंडल बनाती है। अगर मेरी वृत्ति पॉजिटिव है तो सबके प्रति मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव है। अगर मेरी आत्मिक वृत्ति सबके प्रति है तो सबके रूहानियत का वायुमंडल बन जाएगा, और नहीं तो क्या होगा, दैहिक है तो देह देखूंगा, दैहिक वायुमंडल बन जाएगा, देह की बातें शुरू हो जाएंगी। तो वृत्ति से वायुमंडल, वायुमंडल जैसे एक एक स्थान पर होता है, इस हॉल में वायुमंडल बन सकता है, जैसे बाबा जब आए तो सारा वायुमंडल कैसा हो गया, रूहानियत से भर गया। दादी जब आती हैं तो सारा वातावरण रूहानियत से भर जाता है, और फिर वृत्ति से भावनाएं पैदा होती हैं, फिर लोगों में भावना आई, भावना चेहरे पे दिखाई देती है ना, भावना दिखाई देती है ना, सब लोग मुस्कुराते हैं, है ना, खुश हो जाते हैं। तो वृत्ति से भावना पैदा होती है और भावना से वाइब्रेशन फैलते हैं। वाइब्रेशन कहते हैं हजारों किलोमीटर दूर तक जाते हैं, जहां जहां बाबा के बच्चे बैठे हैं, चाहे भारत में बैठे, चाहे विदेशों में बैठे, चाहे अमेरिका में बैठे, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठे, सब तक वाइब्रेशन बाबा के जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? तो भावना से वाइब्रेशन जाते हैं और वाइब्रेशन से, भावना से फिर संकल्प पैदा होते हैं और संकल्प कहां तक जाते हैं? संकल्प पूरे विश्व तक जाते हैं, उसे सृष्टि बनती है, संकल्पों से सृष्टि बनती है। ठीक है, तो इस तरह से जब स्मृति वृत्ति दृष्टि और स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प, ये हमारा मन है। तो ये जो है हमारी स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प, ये हमारा टोटल दिल पे डिपेंड करता है। दिल सच्ची और साफ है, उसमें दिलाराम आ गया। दिलाराम मान कौन? कौन? ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद, शक्तियों का सागर आ गया, तो फिर हमारी स्मृतियां खत्म होने लगती, पुरानी मेमोरीज डिलीट होने लगती हैं। देह की स्मृतियां, देह के संबंधों की स्मृतियां, देह के स्वभाव संस्कार की स्मृतियां, देह के पदार्थों की स्मृतियां डिलीट होने लगती, मतलब वो विक्रम विनाश होने लगते हैं। विक्रम क्या चीज है? पाप कर्म क्या है? यही स्मृतियां ही पाप जो हमारे रिकॉर्ड है। वो पाप कर्म क्या होते हैं? जैसे मान लिया किसी व्यक्ति को मैंने गुस्सा किया, कल गुस्सा किया, आज फिर मेरे सामने आ गया, तो फिर क्या होगा? वही फाइल खुल जाएगी, फिर गुस्सा हो जाएगा। भले मैं अपने आप को मन में दृढ़ संकल्प सुबह सुबह करूंगा आज गुस्सा नहीं करूंगा, किंतु वो व्यक्ति सामने आते ही वापस गुस्सा आएगा, क्योंकि उसने कल मुझे गाली दी थी, मेरी बुराई की थी, तो आज वो फिर वो याद आ जाएगा, फाइल खुल जाएगी, गुस्सा हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमें बार बार हमसे पाप कराते रहते हैं, इसलिए इनको पाप कहते हैं, क्योंकि विकारों के वश किए विक्रम विक्रम कहलाते हैं। काम के वश, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश, चिंता के वश, भय के वश, जल्दीबाजी के वश, ईर्ष्या द्वेष के वश किए हुए कर्म, आलस के वश, अलबेलेपन के वश, जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म कहलाते हैं। वो सब रिकॉर्ड है यहां पर। तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी कम हो जाती है, हमारे विचार चलने इतने कम हो जाते हैं। जब हमारे विचार एक से कम हो जाते हैं, सिर्फ बाबा में खो जाते हैं, मैं बाबा का, बाबा मेरा, वो सिर्फ बाबा रह जाता है, तो सिर्फ एक विचार जब रह जाता है तो हमारी मेमोरीज ये डिलीट होने लगती है। मेमोरीज कौन सी वाली? ये देह की, देह के संबंधों की, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों की मेमोरीज, स्मृतियां डिलीट होने लगती हैं। और ये स्मृतियां डिलीट होने से क्या होता है? इसी को विक्रम विनाश करना कहते हैं। मैंने सुबह अमृत वेला किया, ये काम अमृत वेले पॉसिबल है। जब हम बाबा को सब परमधाम में जाते हैं, अपनी याद करते करते बाबा के सब परमधाम में चले जाते हैं, तो परमधाम में जब स्मृतियां हमारी चली जाती हैं, तो तब परमधाम में उस स्थिति में आत्मा बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, वो स्थिति में मेरे विक्रम विनाश माना, ये मेमोरीज डिलीट होने लगती हैं। और डिलीट होने के बाद क्या होगा? इसकी आगे निशानी क्या है? जिस व्यक्ति के साथ मैंने कल गुस्सा किया था, या उसने मेरे साथ गलत गुस्सा किया था, आज वो व्यक्ति मेरे सामने आता है तो मुझे ये याद ही नहीं आता कि इसने कल क्या कहा था, क्योंकि फाइल ही डिलीट हो गई ना, कंप्यूटर में फाइल ही नहीं है वो अभी। आज वो व्यक्ति आएगा, मैं ऐसे मिलूंगा जैसे कुछ कल हुआ ही नहीं था। जैसे हमारे दादियों के पास जाओ ना, कल कोई बात होगी ना, गलती कोई बात के लिए कल गए, कल कोई बात कह भी दी, तो आज दादी के पास जाओ, दादी कहेगी आओ जी आओ, कल कोई बात ही नहीं थी, कल कोई बात ही नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी जो मेमोरीज वो तुरंत डिलीट कर देती हैं, राइट? तो ये निशानी विक्रम विनाश करने के। तो ऐसे हमारी स्मृतियां धीरे धीरे, जितना हम अमृत वेला पावरफुल करते जाएंगे, इसलिए बाबा ने कहा अमृत वेला करने के बाद क्या करो? फिर दृढ़ संकल्प रिवाइज करो, जो कमजोरी छोड़नी है, खामी छोड़नी है, उसको छोड़ो दृढ़ता के साथ, क्योंकि उसमें शक्तिशाली स्थिति है ना अमृत वेला योग करने के बाद। और फिर रिवाइज करो, मुझे आज से ये करना है, मुझे आज से ये गुण धारण करना है, पक्का करो उसको बार बार, और फिर दिन में बार बार रिवाइज करो, हमने ये वायदा किया बाबा से, दृढ़ प्रतिज्ञा की है। दृढ़ता माना जान जाए पर वचन ना जाए, है ना? तो इतनी दृढ़ता से उसको समझना है, जो भी हमने किया झूठ नहीं बोलना है, हमें संपूर्ण पवित्र रहना है, व्यर्थ नहीं सोचना है, कोई कुछ मर्जी करता रहे मुझे किसी को कुछ नहीं कहना है। हमने बताया एबीसीडी, एबीसीडी करो किंतु ई और एफ मत करो। ई माने एक्स्ट्रा, मनमत परमत है ना, कोई गुरु मत, किसी ने बताया कि आप प्राणायाम कर लो, किसी ने कहा आप ये कर लो मुद्रा लगा के बैठ जाओ, किसी ने कहा कुछ और कर लो, किसी ने कहा लंबा सांस लेके फिर बैठो तब बाबा को याद करना, किसी ने और कुछ बताया, नहीं बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो मुझे नहीं करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना, जो ब्रह्मा बाबा ने एक्जैक्टली ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, फॉलो फादर करना है, सी फादर करना है, सी ब्रदर सिस्टर नहीं करना है, राइट तो मुझे एग्जैक्टली बाबा ने जो कहा वो करना है, मुझे बाबा जैसा बनना है, मुझे किसी और जैसा बनना है क्या? अगर मैं पहले ही कम को फॉलो करूंगा तो बाकी तो मुझे संपूर्ण तक बन ही नहीं सकता हूं, ठीक है ना? तो इसलिए सिर्फ ई माना एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो बाबा ने कहा सिर्फ श्रीमत पे चलना है, मनमत परमत पे जरा भी नहीं चलना है। फिर है एफ, एफ माना फोर्स, किसी को जबरदस्ती बदलने की कोशिश मत करो, पति को पत्नी को बच्चों को माता पिता को दोस्तों को जबरदस्ती नहीं, कर्मों से बदलो, जो बाबा ने कहा स्वचिंतन स्वदर्शन करते हुए उनको अपने जीवन में लाओ, तो आपके चेहरे और चलन के अंदर जो परिवर्तन आएगा उससे दूसरे परिवर्तन होंगे। देखो कितना, पहले कितनी जल्दीबाजी करते थे, पहले कितने गुस्सा करते थे, अभी देखो कैसे एकदम शांत रहते हैं, हर बात में धीरज है, इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा व्यवहार करते हैं, कभी गलत नहीं करते हैं, तो क्या होगा लोग इसके अंदर कैसे परिवर्तन आया? तो फिर हमसे पूछेंगे, तब पूछे तब बताओ, राइट? अपने घर वालों को स्पेशली, अपने बच्चों को स्पेशली, बच्चों को ज्ञान सुना के आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, घर वालों को ज्ञान सुना के परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बाहर ज्ञान सुना सकते हो, घर वालों को परिवर्तन करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप क्या करो, कर्मों से परिवर्तन करते देखो, तो फोर्स नहीं लगाओ किसी को भी, है ना? जितना बाबा ने कहा जितनी योग की ताकत होगी ना आपके अंदर, तब सुनाओगे जब तीर लगेगा, आपके अंदर योग है नहीं, सिर्फ ज्ञान ज्ञान सुनाना आता है तो कोई बदलेगा नहीं उससे, खाली ज्ञान सुनाने से कोई परिवर्तन नहीं, मैं बोलूं कुछ करूं और कुछ तो उससे कोई बदलेंगे लोग? कोई नहीं बदलेगा। तो ये आप नियम पक्का करो, ठीक है? तो जितना स्मृति ऐसे परिवर्तन होती जाएंगी, स्मृति से हमारी वृत्ति आत्मिक स्मृति में जितना एबीसीडी भरता जाएगा ना, उतना हमारी वृत्ति आत्मिक होती जाएगी, मतलब रूहानियत वाली भावना, शुभ भावना, शुभकामना सबके प्रति हो जाएगी, किसी के प्रति लगाव झुकाव प्रभाव टकराव की भावना रहेगी नहीं, फिर हमारे संकल्प शुद्ध शांत श्रेष्ठ हो जाएंगे, जो दादी ने कल कहा ना, दादी जानकी जी ने कल कहा ना कि शुद्ध मन को क्या बनाओ, शुद्ध बनाओ, शांत बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, तब हमारे संकल्प शुद्ध हो जाएंगे, मतलब पवित्र हो जाएंगे, शांत मतलब कम चलेंगे, जरूरी है वो चलेंगे, और श्रेष्ठ ऊंचे कल्याणकारी संकल्प चलेंगे। तो ये है हमारा मन, फिर जो मन में रहेगा ना ये चीज, ये चेहरे पे दिखाई देगी। तो मन रूपी चेहरा, जो बाबा ने कहा अपनी शक्ल देखो, अपनी शक्ल देखो, रोज आईने में शक्ल देखो, कौन सा आईना? दिल रूपी आईने में शक्ल देखो, ये शक्ल कौन सी शक्ल? ये बाहर वाली शक्ल नहीं, मन रूपी शक्ल देखो, मन रूपी चेहरा देखो, फिर ये चेहरा दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट बनता जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, अनकॉन्शियस माइंड भी नंबर बार, पहले 83 जन्म का, फिर 82 जन्म का, फिर 81 जन्म का, फिर 80 जन्म का, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे एक दिन हम 81वें जब 21वें जन्म पे पहुंच जाएंगे तो हम फरिश्ते बन जाएंगे, फिर हमारे हर कर्म में भी दिखाई देगा, सत्यता दिखाई देगी, पवित्रता दिखाई देगी, निर्भयता दिखाई देगी, धैर्यता दिखाई देगी, संतुष्टता दिखाई देगी, मतलब दैवी गुण हमारे हर कर्म से दिखाई देंगे, तो फिर चेहरे और चलन द्वारा हम बाप की प्रत्यक्षता होगी, हमारे मस्तक से बाबा नजर आएगा, नैनों से सकाश होगा, मुख से बाबा के ही बोल निकलेंगे, कानों में सिर्फ बाबा का ही बोल जाएंगे, तो इस तरह से हमारा दिल क्या हो जाएगा, सदा खुश, और मन क्या होगा, सदा वाबा हो जाएगा, वाबा माना सदा खुश रहेगा, सदा खुशनुमा दिखाई देगा चेहरा, किसी बात पे भी नाराजगी नहीं आएगी, कुछ भी होता रहे, चाहे घर में चाहे बाहर कहीं भी कुछ होता रहे, साक्षियों की हर चीज देखते रहेंगे ना? और कर्म हमारे कैसे हो जाएंगे, एकदम कैसे देवताओं जैसे दैवी गुणों वाले कर्म होते जाएंगे, तो इस तरह से हम बाप की प्रत्यक्षता कर पाएंगे, और ये तन में भी एनर्जी जाएगी, क्योंकि आत्मा पावरफुल हो गई, ड्राइवर समझदार बन गया, मन पॉजिटिव हो गया, तो ये तन भी। फिर एक बात मैंने सुबह सुबह जो चिंतन कर रहा था आज, कल मैंने चिंतन किया इस बात पे, हमने अमृत वेला भी किया, मुरली भी सुनी अच्छी, और मनन चिंतन भी कर रहे हैं, मंथन भी कर रहे हैं, कि तो फिर मैंने भोजन गलत खा लिया, मान लीजिए पराठा खा लिया, पकोड़ा खा लिया, बहुत मिर्चे खा ली, तो उससे क्या आएगा? आलस आएगा। अगर रासिक भोजन कर लिया मैंने, रासिक माना पराठा पकोड़ा समोसा मिठाइयां खा ली, तो क्या होगा? उससे आलस पैदा होगा, नींद आएगी, अलबेलापन आएगा, छोड़ो ना अभी क्या योग करना है, मिस कर देते हैं आज, सो जाते हैं, क्लास में क्या जाना है कमरे में सो जाते हैं, बहुत थक गए, है ना? तो फिर वो थकावट फील होगी ना। तो ये जो है हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो चार मर्यादाएं हैं ब्राह्मण जीवन की, पवित्रता, पहली चीज पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और सोपन तक भी पवित्रता होनी चाहिए। इवन वैध सोचना भी है पवित्रता, ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये भी है पवित्रता है। तो ये हमारे अंदर से, अगर हम खाली अमृत वेला कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, मुरली को दिन में कितनी बार मुरली रिवाइज करनी चाहिए? 21 बार रिवाइज करनी चाहिए। कितनी बार रिवाइज करनी चाहिए? 21 बार मुरली रिवाइज करनी चाहिए। चलो 21 बार, 5 बार तो कम से कम पढ़नी चाहिए पूरी, और फिर दिन में जैसे ही मौका मिले, खाना खाने के पहले दिल को, देखो मुरली हम कहां रखते हैं, जेब, दिल के पास रखते हैं ना हमेशा, दिल है ना यहां पर, तो मुरली को दिल के पास रखते हैं, और लव लेटर ना बाबा का, तो हम क्या करते हैं इसको, लव लेटर कभी पब्लिक को दिखा के नहीं पढ़ते हैं, है ना, जैसे ही मौका मिला देखा, एक लाइन निकाला, ऐसे देखा, मुस्कुराए और फिर जेब में रख दिया, है ना, है ना? तो ऐसे दिल, ऐसे मुरली को बार 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 21 बार 21 जन्म का भाग्य लेना ना, कितने जन्म का भाग्य लेना है, 10 जन्म का, 5 जन्म का, 21 जन्म, तो 21 बार बाबा की मुरली, ये भी आदत डालनी पड़ती है ना, अटेंशन रखना पड़ता है ना। तो जितनी बार इस मुरली को बाबा रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, उतनी शक्ति आती जाएगी, ठीक है, तो उतनी ज्यादा बार उसको रिवाइज करते जाओ। तो अमृत वेला, मुरली, और फिर उसके बाद बाबा रिवाइज करो, बाबा ने जो कहा उसको देखो, बाबा ने जो कहा मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं, और सोने के पहले बाबा को लेटर लिखो, चार्ट भरो, और फिर बाबा की गोद में सो जाओ। ये तो चार नियम है, फिर चार मर्यादाएं, पवित्रता, सबसे पहली पवित्रता, बिना पवित्रता के योग लग नहीं सकता। कई लोग कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, हमें 20 साल हो गए योग चल रहे हैं, हम रोज मुरली सुनते तो भी योग नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं बुद्धि खराब है, किसी के साथ लगाव है, किसी के साथ झुकाव है, किसके प्रभाव में है, किसी के टकराव में है, यह भी अपवित्रता है। ये चारों बातें अपवित्रता में आती हैं, लगाव, झुकाव, प्रभाव और टकराव। कोई टेलीविजन देखता है, कोई अखबार पढ़ता है ना, यह भी एक्चुअली अपवित्रता है। सच पूछो तो बाबा ने हमें अखबार, ठीक है, सेवा के हिसाब से अखबार पढ़ा वो ठीक है कि भाई आज दुनिया में क्या हो रहा है, कि तू सारा टाइम अखबार में लगे रहे, सारा टाइम टीवी देखते रहे, ये भी अपवित्र, क्योंकि वहां से कैसी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, क्या चीजें आती, बुद्धि में जाएंगी ना, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो बुद्धि पवित्र हुई क्या अपवित्र हुई? दादी जानकी ने हमें कहा था एक बार, मुझे याद है 2008 में, 31 दिसंबर 2008 में कहा था, हम लोग दादी हमसे मिल रहे थे, तो दादी ने कहा आप ये छोड़ दो सभी, हम 15-20 भाई बहन थे, भाई थे, तो तब से हमने छोड़ दिया, अब 5 साल से हमने कोई अखबार देखा ही नहीं, तो हमें क्या नुकसान हुआ क्या कोई? 5 साल हो गए आज अखबार देखा नहीं है बिल्कुल भी, है ना, कभी नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ, सब इंफॉर्मेशन बाबा दे देता है ना, अपने आप ही लोग बता देते हैं ये ऐसा हो रहा है, ऐसा वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ, हमें आवश्यकता ही नहीं है अखबार पढ़ने की ना, ये तो आधा घंटा बैठ के अखबार पढ़े रोज, है ना, तो आवश्यकता नहीं है ना? तो ये भी जितनी जितनी पवित्रता बढ़ती जाएगी उतना बाबा से योग बढ़ता जाए, क्योंकि वो एवर प्योर है ना बाबा, पवित्रता का सागर है, और मैं गंदा हूं तो कैसे योग लगेगा, समान में योग लगेगा ना। तो पहली पवित्रता, शुद्ध अन्न, शुद्ध सात्विक अन्न, फल सब्जियां, रोटी सब्जी, है ना, दूध, गाय का दूध पीना, समय अंकुरित खाना, समय चबा चबा के खाना खाना, बाबा की याद में खाना, बाबा की याद में बनाना, ये सात्विक भोजन है, इससे योग लगेगा, हल्का रहेगा सिस्टम, थोड़ा सा खाना, जरूरी नहीं कि पेट भर के खाएं, स्वाद के वश खाते ही रहें, ज्यादा अच्छा बना तो ज्यादा खा लें, कम बना तो कम खा लें, स्वाद नहीं है तो नहीं खाना आज खाना मुझे, ये ब्राह्मणों का नियम नहीं है, ब्राह्मणों की मर्यादा नहीं है। दो चपाती सुबह खाते, दो दोपहर, दो शाम, ठीक है, उतनी खाओ ना, चबा चबा के खाओ, बाबा की याद में खाओ तो हमारा योग लगेगा, नहीं तो योग लगेगा नहीं। कुछ मर्जी कर लो, अमृत वेला बैठो योग नहीं लगेगा, मुरली सुनो यहां बैठे योग, मुरली अंदर जाएगी नहीं, पवित्रता है तो मुरली अंदर जाएगी, शुद्ध है, मतलब शुद्ध बुद्धि शुद्ध कब होगी, जब एबीसीडी रहेगा हर समय, फिर बुद्धि शुद्ध होगी, शांत होगी, उसमें रूहानी प्यार बाबा के लिए आएगा, अपने लिए भी आएगा तो उसके लिए भी आएगा, जैसे रूहानी प्यार कहां से आएगा, स्नेह कहां से आएगा बाबा के लिए, स्नेह आएगा ही नहीं, तो प्यार का सागर तो बाबा है, तो प्यार तो आया ही नहीं। तो जब इस तरह से गहराई में जब शुद्ध अन्न, सत्संग, तामसिक भोजन खा लिया, लहसुन प्याज खा लिया, बासी भोजन खा लिया, है ना, किसी और के हाथ का बना तामसिक, जिसके विचार तामसिक है, तो क्या होगा, अपने आप ही बुद्धि में काम विकार क्रोध लोभ मोह अहंकार चिंता भय आता रहेगा, फिर कहां से योग लगेगा, एक बार गुस्सा कर लिया तीन दिन तक अब योग लगेगा ही नहीं आपका, है ना। तीसरा सत्संग, बाबा और मुरली का संग, बस बाबा और मुरली के अलावा किसी का संग मत करो, संबंध निभाओ जरूर, जो भी जिम्मेवारियां निभाओ, किंतु संग सिर्फ बाबा का और मुरली का रखो। और चौथा दैवी गुणों में व्यवहार, किसी से भी व्यवहार करो, घर में करो, बाहर करो, सत्यता का व्यवहार करो, पवित्रता का व्यवहार करो, निर्भयता से व्यवहार करो, है ना, अंतर्मुखी होकर व्यवहार करो, अपने अंदर आत्मा देखते रहो, दूसरों को आत्मा देखते रहो, है ना, और परमात्मा की याद में रह के व्यवहार करो, है ना। तो दैवी गुणों में अंतर्मुखी रहो, एकाग्र रखो बुद्धि को, एकांतवासी, एक के अंत में खोए रहो, है ना, एक नामी, कोई दुख हो, परेशानी हो, बाबा से पूछो, दुनिया वालों से मत पूछो, बाबा टचिंग देगा बच्चे, उस डॉक्टर के पास चले जाओ, बाबा कहेगा बच्चे ऐसे कर लो, तो बाबा की एक नामी, एक वर्ता रहो, व्यर्थ बातों को अटेंशन मत दो, जो हो रहा है व्यर्थ हो रहा है, आसपास मत देखो उसको, और एक रस स्थिति में रहो, सरलता रखो, नम्रता रखो, मधुरता रखो, धैर्यता रखो, गंभीरता रखो, संतुष्ट रहो, सहनशील बनो, है ना, मुस्कुराते रहो, आज्ञाकारी, बाबा के आज्ञाकारी बनो, वफादार बनो, ईमानदार बनो, फरमान बरदार बनो। तो ये दैवी गुणों में धारणा करो, ठीक है, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखो। तो जितना ये चार मर्यादाएं हैं, चार लकीर हैं, लक्ष्मण की इसलिए मर्यादा की लकीर है, इसके बाहर रावण खड़ा हुआ है, किस वेश में खड़ा रावण, रावण सीता के बाद रावण बन के आया था कि कुछ और बन के आया था, क्या बन के आया था, साधु बन के आया था। तो माया कभी रावण के वेश में नहीं आती है, साधु के वेश में आती है। तो उसके बाहर रावण तैयार खड़ा है, जैसे ही आपने मर्यादा की लकीर के बाहर पैर रखा तो क्या करेगा, उठा के कहां ले जाएगा, शोक वाटिका में बिठा देगा, ठीक है, दुख 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 दर्द महसूस होंगे, राइट। तो इस तरह से आप अपना ध्यान रखेंगे तो आपका क्या हो, दिल सदा खुश रहेगा, दिल सतो प्रधान रहेगा, बुद्धि पावन रहेगी, और मन सदा खुश माना वाहवा करता रहेगा, चेहरे पर चमक रहेगी, और कर्मों में क्या रहेगी, दैवी गुण झलकते रहेंगे ना। इस तरह चेहरे और चलन से हमारी बाबा की हमेशा प्रत्यक्षता होती रहेगी और बाबा हमसे सदा खुश रहेगा। ओम शांति। चलिए,
हबू वाले बाबा को याद कर ले, प्यारे शिव बाबा को प्यार कर ले, हबू वाले बाबा को याद कर ले, प्यारे शिव बाबा को प्यार कर ले। ओ आ चुके है धरती पर, आओ नैनों से खुद तुम दीदार कर ले, हबू वाले बाबा को याद कर ले, प्यारे शिव बाबा को प्यार कर ले, हबू वाले बाबा को याद कर ले, प्यारे शिव बाबा को प्यार कर ले। शांति बोलो, ओम शांति बोलो, ओम शांति बोलो, ओम शांति बोलो। काबा के घर में जो भी है आते, स्वर्णिम दुनिया के तो भावो पाते। जो कोई दिल से मेरा बाबा कहते, बाबा भी उन पर कुर्बान जाते। भक्तों का भगवान है, बच्चों का जो जान है, रात दिन बाबा को साथ रख ले, अच्छे बुरे कर्मों का सार समझ ले, आबू वाले बाबा को याद कर ले, प्यारे शिव बाबा को प्यार कर ले। ओम शांति बोलो, ओम शांति बोलो, ओम शांति बोलो। दुनिया में ऐसा स्थान न देखा, बहती हर रोज जहाँ ज्ञान की गंगा। परियों फरिश्तों सा सबका है जीवन, मुस्कान चेहरे पर मन सबके चंगा। भारत की ये शान है, दैवी राजस्थान है, वरदानों से झोली भरपूर कर ले, शांति का भंडार तुम भर ले, आबू वाले बाबा को याद कर ले, प्यारे शिव बाबा को प्यार कर ले। आज के है धरती पर आओ नैनों से खुद तुम दीदार कर ले, आबू वाले बाबा को याद कर ले, प्यारे शिव बाबा को प्यार कर ले, आबू वाले बाबा को याद कर ले, प्यारे शिव बाबा को प्यार कर ले। शांति बोलो, ओम शांति बोलो, बोलो सब भाई, ओम शांति बोलो, ओम शांति बोलो।
थैंक यू, ओम शांति।